cafeína.
Só com o é, cana?
Oi, custo cafeína. Cajona, cajona. Cujuta, chao.
Pide jugos, não.
Cujo cafeína. Cujte aco.
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज़ अज़ीज़ और हमारे इस प्रोग्राम की एक मेहमान हैं, आपको यकीनन आपने फेसबुक पर देखा होगा, आप खुश भी होंगे उनका नाम सुन के। एक नौजवान फनकारा हैं और उनका नाम है बानो रहमत। तो ख़ासतौर पर कश्मीर में हमारे सुनने वाले, मुझे कई मैसेजेस भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से भी मिले, क्योंकि लोग खुश हैं कि आज कश्मीरी ज़बान के एक गुलूकार आ रहे हैं। थोड़ा सा मसला इसमें यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जश्न बहारा है और उस जश्न बहारा में लाइव परफॉर्म भी कर रही हैं बानो जो हैं। तो बानो इस वक्त मसरूफ़ हैं, उस वक्त ऑन एयर हैं, यानी अपने स्टेज पर हैं इस वक्त, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे हमारे फ़नकार हैं और बहुत आपको पसंद आए थे, बहुत आप खुश हुए थे जब हमारे प्रोग्राम में आए थे, अकबर खमीसू खान। अकबर जो हैं, नाम सुन लिया आपने, खमीसू खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुद अपने तौर पे भी बड़ा इन्होंने नाम पैदा किया है अलखोज़ा बजाने में, और अकबर ख़ुद भी इस जश्न बहारा में शरीक थे। लेकिन खुशकिस्मती से अकबर, क्या ए से नाम होने की वजह से आपकी बारी पहले आ गई, किस वजह से आप फारिग हो गए जल्दी?
हाँ जी, सबसे पहले जो था वो क्लैश डांस था, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस थी, तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, बहुत ज्यादा क्राउड था, आई थिंक 5-1 हज़ार के नजदीक पब्लिक थी।
अच्छा,
ज्यादातर फैमिलीज आई हुई है थी।
तो थोड़ा बताइए ना, है क्या ये, थोड़ा सा बताइए, बताइए हो क्या रहा है ये?
यहाँ पे ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, जश्न बहारा है
जी।
और जश्न बहारा में जो है हमारे जितने भी कलर्स हैं पाकिस्तान के, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और कश्मीर के आए हुए आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो तकरीब हो रही हैं वो बहुत ही रंगारंग हैं।
अच्छा, तो कौन कौन से आर्टिस्ट, कुछ से तो आपने मेरी बात करवाई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन फोक आर्टिस्ट सिंध से आप हैं, तो सिंध से कौन कौन आया हुआ है?
सिंध से मैं, एक तो मैं हूँ अलगोजे पे, दूसरे शौकत फकीर है, इसके अलावा पंजाब से जो है वो भी वो जो ढोल ग्रुप वाले हैं वो है, और इसके अलावा हमारे चारों सूबों के पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के डांसर्स हैं जो कि चारों सूबों के डांस पेश कर रहे हैं। उसके अलावा सितार पे उस्ताद आमिर हुसैन है, सितार पे उस्ताद आमिर हुसैन है, और एजाज सरहदी है केपीके से।
अच्छा,
उसके अलावा
ये मुनीर सरहदी के बेटे हैं,
जफर है रबाब पे।
अच्छा ठीक, तो चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसा फंक्शन हो रहा है और इतने लोग हैं इसमें। तो ये मुझे बताइए अकबर, कि आपसे अलगोजा तो मैं फरमाइश कर नहीं सकती, इस वक्त आप रास्ते में हैं, तो आप गाते भी हैं अलगोजा बजाने के अलावा या नहीं?
गाना तो नहीं, हल्का फुल्का गुनगुनाना तो जरूरी होता है, क्योंकि सुर का जो ताल्लुक होता है वो गले से, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो जो चीज अगर आप थोड़ा बहुत गले से करेंगे तो वही वो आप इंस्ट्रूमेंट पे इजी जो है ना वो आप परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अगर मैं आपसे फरमाइश करूं कि आज कोई गाना सुना दीजिए, तो
गाना मैं तो सिंगर तो नहीं हूँ,
लेकिन
अदरवाइज जैसे मोमल रानो का एक शब्द लतीफ भटाई रहमत का एक सिंधी मैं आस्था यंत्र है, वो मैं आपको सुना देता हूँ।
जरूर जरूर जरूर
जी। राडल तो बिन रात, राडल तो बिन रात, राडल तो बिन रात, राडल तो बिन रात, मुखे वेठे वर है लंघे जा, मुखे वेठे वर है लंघे जा, राडल तो बिन रात, राडल तो बिन रात, राडल तो बिन रात, राडल तो बिन रात, आऊं अवा की आहिया केड़ी पुछो था जात मिया। बस इस तरीके से मैं सिंगर तो नहीं हूँ, अदरवाइज जैसे जैसे हम साज बजाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत आवाज से ताल्लुक होता है, तो اسی طریقے سے.
اچھا کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی جھلک سنوائیں ان کے گانے کی جو ہماری مہمان تھی آج, اور آپ ہی نے بلکہ تعارف بھی میرا کروایا بانو رحمت سے. ینگ لڑکی ہیں
ابھی, بانو رحمت جو آرٹسٹ ہیں, انہوں نے نہایت ہی کم ایج میں گانا منا شروع کیا. آئی تھنک یہ 6-7 سال کی عمر سے, 8 سال کی عمر سے انہوں نے, 7-8 سال کی عمر سے جو ہے نا وہ گانا شروع کیا تھا. اور انہوں نے ان کی آواز اس طریقے سے جیسے میڈم نور جہاں کے جو ٹپیکل سانگز ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے یعنی کہ انہوں نے بڑی محنت کی, اور ان کی وائس بہت ہی سافٹ اور بہت اچھی آواز ہے. اس وقت بھی ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور بہت اچھی سنگر ہے, اور انہوں نے بہت بہت زیادہ محنت کی ہے.
مجھے بڑی خوشی ہوئی, سب سے بڑی بات یہ ہے اکبر جو اس بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک اچھی سنگر ہیں بلکہ یہ کہ دیکھیے جب یہ گاتی ہیں, میں نے دیکھا یہ جب گوجری گاتی ہیں ان کا لہجہ بالکل وہ ہوتا ہے, کشمیری گاتی ہیں وہ, پھر میں نے پروین شاکر کی غزل سنی ان سے, پروین شاکر کی غزل, بلکہ میں گلرخ سے کہوں گی کہ پروین شاکر والی غزل اگر آپ ہمیں سنوائیں, تو مجھے ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان کا کس قدر درست ہے تلفظ اور کتنی صفائی سے یہ گاتی ہیں. تو چلیے ہم آپ سے بھی باتیں کرتے رہیں گے, اور جتنے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں بانو کا اتنے یہ غزل ان سے سنتے ہیں. اکبر جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ بڑی محنتی فنکار ہیں, اور ان کی اس غزل سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اتنے شین قاف پہ اور تمام چیزوں پہ بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے. اچھا میں کچھ میسیجز پڑھنے چاہتی ہوں, پھر میں آپ سے بلکہ یہ پوچھوں گی, آپ ہمارے پروگرام میں مہمان آئے تھے اور فیس بک پر بھی آپ تھے اور بڑے لوگ اس پروگرام میں آئے, تو کچھ نام میں پڑھ دوں, عباس حیدر عباس, وسیم علی, حسن فاروق, توصیف شوقی, پرویز جمالی, سکندر انر, ان سب نے تعریف کی ہے, ان کے علاوہ فاروق خان اور الہی, منظور, افضل ظہیر, آصف ظہیر, پیار علی صاحب, یہ سب فیس بک پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم ان سے بھی ابھی بات کریں گے. لیکن اب آپ مجھے بتائیے تھوڑا سا اور کہ یہ جو ینگ فنکار ہیں اس میں سندھ میں بتائیے اس وقت کون سے ایسے نوجوان فنکار ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں جو ابھی 20 سال سے تھوڑے سے اوپر ہیں, 20 اور 30 کے درمیان کی عمر سمجھیے, تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور پرومیننٹ جگہ حاصل کریں گے.
جی اس میں استاد وحید علی کے جو فرزند ہیں جیسے اقرار وحید علی ہے, اور اس کے علاوہ لطیف علی خان ہیں, وحید علی خان کے جو بیٹے ہیں مرحوم کے, اور اس کے علاوہ کافی ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کم عمر میں سے شروع ہیں, جس میں جنسان سمو آج کل بڑے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ, بھی کینیڈا اور یو کے بھی ابھی ریسنٹلی پرفارم کر کے آئے ہیں.
جی
تو اس وقت کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو اسپیشلی, لیکن ہمارے پاس افسوس اس چیز کا ہے کہ جو منسٹریز ہیں یا جو ہمارے کلچر کو پیش کرتے ہیں वो ज्यादातर सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं, नए लोगों को चांस नहीं दिया जाता
जो कि पहले से मशहूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने ये कहा जी।
मैं कहता हूँ अगर नए आर्टिस्टों को जब आप लेके आएंगे सामने तो यकीनन लोगों का जो है ना वो ज्यादा उनको पसंद आएगी मौसीकी जो है।
बिल्कुल।
तो
अभी मैं एक बात आपसे यहाँ जी 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 बोलिए।
मैंने एक बच्चा जो कि 10 साल का है, आप इमेजिन करें, मैंने उससे सूफीज्म में और क्लासिकल आइटम सुने, वो माथली से ताल्लुक है और उसने लोकोत्सव में आके बच्चों का जो प्रोग्राम होता है जो फर्स्ट प्राइज लिया था।
अच्छा।
तो उस बच्चे का नाम मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, लेकिन वो बच्चा जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है कि उस उम्र में 10 साल की एज में वो ऐसा पक्का गा रहा है कि जैसे मैं समझता हूँ कि शायद कोई 10-20 साल
मंझा हुआ फनकार है। बिल्कुल। और अगर इन लोगों को हौसला अफजाई, क्योंकि देखिए नौजवान लोगों का एक मसला रोजगार भी होता है, तो अगर उनको प्रोग्राम मिले, अगर टेलीविजन रेडियो और ऐसे इदारे जैसे लोक विरसा उनकी सरपरस्ती करें तो वो अपने फ़न पे ज़्यादा वक्त लगा सकेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि सोशल मीडिया की तो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ये बताइए कि आप जब वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम में आए, आप वैसे भी बहुत जानते हैं, तो कुछ लोगों ने सुना आपका प्रोग्राम वहाँ पर, कुछ आपको कमेंट्स आए वहाँ से?
जी हाँ, मुझे काफी दोस्तों ने बाद में कमेंट किए, कई लोगों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि हमने आपका वॉइस ऑफ अमेरिका का जो है ना इंटरव्यू सुना था, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई और हम चाहते हैं कि ये ऐसे प्रोग्राम हम सुने जिसमें हमारे को हमारी जो असल मौसीकी है, असल मौसीकी, क्योंकि पॉप म्यूजिक जो देखिए एक अलमिया देखें, एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि पॉप सिंगर है कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हैं, एक कॉन्सर्ट का जब वो आके परफॉर्म करते हैं तो उसको 2.5-3 लाख-5 लाख इजीली पे कर दिया जाता है, और इम्पोर्टेंस भी ये होती है कि वो वेट कर रहे होते हैं जब वो जाते हैं आके वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, चाहे कोई 200 आर्टिस्ट बैठे हुए हों जो कि फोक हो या सूफीज्म से ताल्लुक हो, वो पॉप सिंगर का इतना ज्यादा वो होता है कि यहाँ पे ये सिस्टम जो है ना ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ज्यादा है, यही आर्टिस्ट जो वेस्टर्न बजाते हैं ये पाकिस्तान से जब बाहर जाके जाते हैं तो इनको कोई नहीं सुनता, क्योंकि जितने भी ये रॉक शॉक जो म्यूजिक है ये जो बाहर वाले तो अमेरिका इधर उधर तो ये तो उनको मास्टर है, तो वो हंसते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े जल्दी मकबूल हो जाते हैं।
असल में अकबर मैं ये समझती हूँ, मैं यहाँ पे अकबर मैं ये कहूंगी यहाँ पे थोड़ा सा उनकी उनकी जानिब से दूसरे फनकारों की, कि ये सच है कि पॉप जो म्यूजिक है ना वो हर जगह मकबूल है अब भी, और ये भी होता है कि जब बाहर आते हैं लोग तो उनको सुनने वाले जो जबान के लोग होते हैं यानी जनूबी एशिया के लोग ज्यादातर सुनने के लिए आते हैं, या तो वो तो है ही मकबूल, लेकिन जो बीट हमारे फोक म्यूजिक की है मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करती हूँ, और उसके अलावा कव्वाली जी कव्वाली तो ये इतनी आसमान पे पहुंच जाती है, बिल्कुल जब आते हैं लोग इतना खुश होते हैं, इतनी दाद देते हैं। अच्छा कुछ नाम मैं और पढ़ दूं, अशफाक आफरीदी, अख्तर आफरीदी, नवाज बलोच, सुफैल अहमद, अशफाक चौपान, वाजिद खान, बीजे यूनुस भट्ट, महबूब अली छट्टा और उमर तांते, इन सब ये सब प्रोग्राम सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और ये इंतज़ार भी कर रहे हैं उनका, लेकिन ये सब बहुत खुश हैं कि हम अकबर से इस बहाने दोबारा मुलाकात हो गई। तो अच्छा अकबर, मुझे कोई अपने बचपन का वाक़ सुनाइए अपने वालिद के हवाले से, बहुत जो अच्छी सी कोई याद बताइए अपने खमीसो खान साहब की।
मुझे अच्छा मैं जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा लकी बाबा 4 नंबर में बंगलो था, हमारे पीछे अबू ने भैंसे भी रखी हुई थी जो कि दूध वगैरह घर का और मक्खन सखन ये टाइप की चीजें, तो एक साहब आए जो कराची से आए, उन्होंने कहा कि हमारा कराची में प्रोग्राम है
जी।
और खमीसो खान साहब आपने हमारे साथ चलना है
जी।
तो बाबा साई ने बोला कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप ऐसे कीजिएगा शाम को आइएगा, मैंने किसी से कमिटमेंट की हुई है। जो दूसरा शख्स आया था वो जब आया तो वो अबू से कुछ इस तरीके से मुखातिब हुआ कि खमीसो खान यार मेरे बेटे की शादी है और मेरे पास पैसे नहीं है, और यार तुम मेरा ये इतना ज्यादा मैं चाहता हूँ कि खमीस खान मेरे बच्चे की शादी में आके परफॉर्म करें.
तो अच्छा.
वो सस्ते दौर में ये 1983 जनवरी का वाकया है
जी,
के बाबा साई ने उस टाइम में वो जो कराची से आया था उस टाइम में सस्ते दौर में अबू को वो 3000 रुपए ऑफर करे. 3000 बहुत बड़ी बात होती थी
जी
उस वक्त में. तो उस वक्त में 3000 मनी ही होते थे जैसे आजकल ये समझे कि 1-1.5 लाख के आसपास. तो बाबा ने उसको मना कर दिया और उस वो जो फ्री ऑफ कास्ट जो चाचा आए थे उसको उनके साथ उन्होंने बोला मैं चलता हूँ. तो हम बाबा को देख के बोले अबू आपने वो इतने सारे पैसे दे रहे थे वो आपने उसको मना कर दिया. तो अबू उसके बोले कहते नहीं बेटा ये सही है बस इधर जाना है. तो हमारे अबू जो थे ना वो पैसों को नहीं देखते थे, वो शख्सियतों को देखते थे. ज्यादातर हमारे पास जो गरीब लोग आते थे ना हमारे अबू उनको ज्यादा तरजीह देते थे. वो ज्यादातर बड़े शोज को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे. वो कहते थे कि जो जाना है जाना, लेकिन अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इज्जत देते.
बहुत बड़ी बात है. असल में अकबर बड़े फनकार की नहीं, हर बड़े इंसान की निशानी यही होती है कि वो मादी चीजों को नहीं देखता, उसके नजर में जिन चीजों के
आप,
जी
आपको एक बात बताऊं कि जब हमारे बाबा जब हम स्कूल जाते थे तो समटाइम हमारे साथ ही स्कूल छोड़ने जाते थे हमें, तो घर से निकलते थे तो लोग गले मिल रहे होते थे और हाथ मिला रहे होते थे. बाबा से कहते थे मेरे बच्चों को देर हो रही है बस मैं जा रहा हूँ. तो लोग हाथ यानी कि वो छोड़ते ही नहीं थे क्या वो बड़ी मना और मना इतनी मोहब्बत और इतना प्यार और इतना अखलाक. उसके बाद आजकल के दौर को देखा जाए तो वो पता ही नहीं चलता कि ये मोहब्बतें कहाँ गई, ये प्यार कहाँ गया.
वैसे मैं एक बात बताऊं, पर मुझे बड़ी खुशी होती है, खुशी हुई ये देखकर. मैंने देखा है कि आप अपने जो सीनियर आर्टिस्ट आपके हैं, जैसे जो आपके वालिद के ज़माने के लोग थे, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान से आपने तारुफ़ करवाया, जिस इज़्ज़त से आप अपने बड़ों से पेश आते हैं ना, मेरा ख्याल है ये आप में ख़ानदानी खूबी है. और आप भी अपने वालिद की तरह एक अवामी आदमी हैं, सबसे घुल मिल के रहते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं. अच्छा, दो और लोगों ने, राव अब्दुल हफीज़ शाहिद और इरफान अली, इन्होंने भी प्रोग्राम में शिरकत की है फेसबुक पर. लेकिन क्यों ना हम एक और गीत सुन लें. बानो तो हमारे साथ नहीं है लेकिन बानो की आवाज़ तो है, तो लीजिए सुनते हैं. एक और गीत था, और भी हमारे पास चीज़ें हैं, बात भी साथ साथ करते जाएंगे अपने मेहमान यानी कि इस वक्त हमारे साथ अकबर खमीसू खान है. अच्छा अकबर, और कोई हमें और एक किस्सा सुनाइए खमीसू खान साहब का, उनके अपने साथियों के साथ जो उनके साथ फनकार थे उस ज़माने के, और उसमें रोज़ा नवाज भी, मिस्री खान भी शामिल थे, तो वो कोई हमें बात बताइए, याद कीजिए कुछ.
जी बिल्कुल. वैसे तो मेरे वाले साहब के जो साथ थे वो अहमद शाह नाराई थे और शाहू नाबीना थे, वो जो अबू से सीखते थे. लेकिन अबू उस्ताद मिस्री खान जवानी से भी सीखे और उन्होंने काफी इंटरव्यू में भी ये जिक्र किया कि मैंने उनसे भी यानी कि वो सीनियर थे
जी.
तो मिस्री खान जवानी जो थे वो अलगोजा बजाते भी थे और बनाते भी थे अलगोजा.
अच्छा.
वो अलगोजा बनाते भी थे और बजाते भी थे. तो एक दिन क्या हुआ कि एक जगह पे परफॉर्मेंस आ गई, तो उनको बोला गया बाबा सिंह को, कहने लगे भाई आप परफॉर्म करें. तो बाबा ने जाके मिस्री खान जमाली से पूछा कि उस्ताद मुझे इजाजत है मैं परफॉर्म करूं
जी.
उन्होंने बोला नहीं मैं करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस, उन्होंने अपना नंबर जो है उनको दे दिया। और यानी कि वो मिस्त्री खान जमानियो या उनके खास जब तक इजाजत वो बड़े आर्टिस्ट नहीं देते थे वो खुद परफॉर्म नहीं करते थे, ऐसे जाते थे।
तो अकबर आपने कहा
कि वो
जी एक बात मैं पूछना चाहूंगी, भूलना चाहूंगी मैं, कि आपने कहा कि मिस्त्री खान जमाली साहब अलगोजा खुद बनाते थे, इससे क्या मतलब है? यानी उनके खानदान में ये फन मौजूद था?
जी 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 हाँ, वो अलगोजा बना, वो उनकी जो मिसेज थी मिस्त्री खान जमाली की
जी,
वो अलगोजा बनाती भी थी और बजाती भी थी। मिस्त्री खान जमाली जो अलगोजा सीखे थे वो अपनी घरवाली से सीखे थे बनाना।
अच्छा,
वैसे तो उनसे पहले बना जो बनाना अलगोजा उन्होंने अपनी मिसेज से सीखा।
अच्छा,
क्योंकि उनकी उनकी जो उनकी घरवाली जो थी मिस्त्री खान जमाली की, उनके उनके जो अब्बा थे वो ये काम करते थे। तो अलगोजा अलगोजा जो है ये भी एक मुश्किल काम है बनाना, क्योंकि उसकी लकड़ी जो होती है वो बड़ी नायाब होती है। हमारे सुबह सिंध में किरण और शीशम की बनती है, लेकिन किरण की जो लकड़ी है रीड उसकी शीशम में भी वही लगती है। और ये जो लकड़ी होती है, ये जो किरण होती है, इसको 100 साल तक भी कीड़ा नहीं लग सकता, क्योंकि कड़वी होती है और हकीम इसकी दवाइयां भी बनाते हैं इस लकड़ी की।
अच्छा,
तो
मैं आपको एक दात पहुंचा दूं, तौसीफ शौकी ने लिखा है कश्मीर से कि वाह क्या मज़ा आ रहा है सुनने में। तो बात यह है कि वैसे तो बहुत कमी महसूस होती बानू की कि वो नहीं आई, लेकिन हमें ऐसा सब्स्टिट्यूट मिला है। इत्तेफाक की बात है कि मेले में आप भी जश्न बहारा में मौजूद थे और आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी थी, वरना हम महरूम रहते आपकी इन बातों से। अच्छा ये बताइए, मुसी खान जमाली बहुत बड़े फनकार थे खुद भी, तो उनके खानदान में अब कोई और है जो उनकी इस रिवायत को जैसे कि आपने ताज़ा किया?
नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, क्योंकि उनका कोई भी ना बेटा, उनकी सिर्फ बेटी थी और बेटा नहीं हुआ उनको, और वो अलगोजा कोई भी मना उनके खानदान में नहीं बजाया। जब अच्छा। मेरे को रेडियो पार्टी से हैदराबाद से जॉब मिली तो मुझे लोगों ने कहा यार वो मिस्त्री का जवानी का तो कोई बच्चा अलगोजा नहीं बजाता है, यार तुम तो बजाओ अलगोजा
जी।
तो फिर मैंने ये अलगोजा ना जो है ना वो बजाना शुरू किया।
अच्छा,
तो फिर अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी।
अच्छा, तो चलिए एक हम अपने कॉलर को ले लें। अल्लाह देता शाकिर है हमारे साथ बिहारी से, वो भी शायद कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी अल्लाह देता शाकिर साहब, अल्लाह अच्छा इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। हमारे साथ और भी एक दो कॉलर्स थे, उनकी भी कॉल्स ड्रॉप हो गई। तो चलिए अब हम कॉल्स नहीं लेते क्योंकि हमारी मेहमान तो है नहीं, लेकिन बहरहाल आप लोग कोशिश कर दें कि गुल ले रही हैं कॉल्स अगर मिल जाते हैं तो। हमारे साथ शुएब नज़ीर, गुलनवाज़ ख़ान और सरदार मुनीर अख्तर, इन सब ने भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ये लोग। मैं उनके नाम बता रही हूँ जो फेसबुक पर मैसेजेस कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग। तो बहुत शुक्रिया आप सबका फेसबुक पर प्रोग्राम सुनने का। अगर आप लोग सवाल लिखते तो मैं पूछती ज़रूर, लेकिन मुझे पता है कि जो कुछ लोगों ने बातें लिखी हैं वो भी उन्होंने पूछना चाहिए बानों से, उनको तो पता नहीं था कि हमारा इतना कीमती फनकार एक और हमारे पास आने वाला है। तो अच्छा ये आपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि अब क्योंकि अलगोजा बजाने वाले नहीं हैं तो इसलिए जो बनाने की सनत है अलगोजा बनाने की वो भी ख़त्म होती जा रही है, तो कितने लोग हैं इस
जो अलगोजा बनाने वाले ही खत्म हो जाएंगे तो ये बजाने वाले क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। ये गवर्नमेंट और ये जो लोग हैं माना ये इसको सपोर्ट नहीं करते जो बनाने वाले हैं हुनर। ये भी इसी तरीके से देखें कि बाबा साहेब की पगड़ी होती थी लुंगी से कहते, उसमें चांदी की तार लगे हुए थे। तो वो पगड़ी जो है वो मम से एक साहब ने मांगी, यदि हम आपको इसके 50,000 दे रहे हैं, फिर उसने 80,000 बोले। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपको किस पर्पज के लिए चाहिए? उसने कहा इस पर्पज के लिए चाहिए कि हम ये लुंगी साज बनाते हैं, ये पगड़ी हमें इसका डिजाइन चाहिए। मैंने कहा भी ना मुझे 80,000 चाहिए और ना मुझे 50,000 चाहिए, ये अगर ये काम फेल है तो हम उससे अच्छी जाए। मैंने फिर वो पगड़ी इनको दिखाई, आजकल ये फिल्म में जो लुंगी बन रही है वो उसी की कॉपी है, एज इट इज तो नहीं बना रहे कि उसमें ओरिजिनल रेशम लगता है और ओरिजिनल जो है उसमें चांदी के तार लगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज होती है ना वो होती है अमानत होती है। अगर मेरा आर्ट है, अगर मेरे मरने के बाद अगर जिंदगी में किसी का ट्रांसफर हो जाए तो ये काम चलता रहे और ये कभी खत्म ना हो।
बिल्कुल,
तो اسی وجہ سے پھر میں نے وہ جو لنگی تھی ابو کی جو تھی نا وہ میں نے اس کو کوئی ایک ہفتے کے لیے دی, پھر ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے لگی, لیکن آپ یقین کریں میں نے اسے ایک روپیہ نہیں دیا.
بہت اچھی بات ہے اکبر, کیونکہ یہ آپ کے والد سے محبت اور عقیدت کا اظہار بھی تو تھا کہ ان کو چاہنے والے ایسا کر رہے تھے. اچھا مجھے یاد ہے کہ جو بجاتے تھے خمیس خان صاحب الغوزہ, اس پہ اتنا بنا سجا ہوتا تھا بہت ہی خوبصورت, تو اس کو کون اس طرح کا الغوزہ کون تیار کرتا تھا؟ اس کی سجاوٹ جو تھی,
اس کی جو سجاوٹ تھی, یہ تو جو گاؤں گوٹوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اس کی موتی ہوتی پرو کے اس کی جھالریں بناتی ہیں.
اچھا
ادر وائز جو اس کا جو چاندی کی جو اوریجنل چاندی کی جو لگتی ہے وہ خود لگواتے تھے والد صاحب.
اچھا
کہتے تھے یہ انسٹرومنٹ ہے, اس میں وہ جو اوریجنل چاندی لگتی تھی اس کے اوپر لکڑی کے اوپر وہ بلیک رنگ کا پینٹ کرتے تھے ہلکا ہلکا سا, اور یا پھر اس کے اوپر وہ ایز اٹ از لکڑی کے اوپر جو ہے نا وہ اوریجنل جو چاندی ہوتی تھی وہ اس کی وہ سجاوٹ کر کے نا وہ کلیاں لگاتے تھے اس کے اندر.
تو آپ کے پاس ابھی تک ہے محفوظ ان کا جو الغوزہ تھا جو مخصوص جو
ان کا دو جوڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ایک جوڑی ابھی میں نے لوک کشتہ کو, کیونکہ لوک کشتہ نے ابو کا مجسمہ بنایا ہے, اور اسی میں ابو کے کپڑے بھی جو ہمارے پاس پڑے تھے وہ بھی کپڑے ہم نے پرووائڈ کیے, اور واسکٹ بھی دی, الغوزے بھی ابو کو دیے, تو وہ بالکل ان کا جو مجسمہ ہے نا وہ اس میں وہ الغوزہ بجا رہے ہیں اور وہ لوک کشتہ میں پڑا ہوا ہے.
اچھا تو اب آپ ایک کام کیجیے, آپ اسلام آباد میں ہیں, میں چاہوں گی کہ میں خمیس خان صاحب کے لیے ضرور کچھ لکھوں, آپ نے آج جو اتنی اچھی یادیں بتائی ہیں ان کو فیس بک پہ یا اپنے ویب سائٹ کے لیے لکھ دوں, تو آپ کچھ تصویریں اس مجسمے کی, اور آپ نے پہلے اپنے والد کی تو مجھے بہت پیاری فوٹوز بھیجی تھیں اپنے ساتھ, تو وہ میرے پاس موجود ہیں, لیکن یہ مجسمہ جو ہے نا اس کی کچھ تصویریں مجھے ضرور کھینچ کے بھیجیے اس میں سے.
جی میں بالکل میں لوک پور سے جا کے اور اس میں تصویر لینا الاؤ تو نہیں ہے, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اگر انہوں نے مجھے الاؤ کیا تو پھر میں وہ تصویر بنا کے جو ہے نا وہ آپ کو بھیج دوں گا.
آپ کو تو نہیں منع کر سکتے بھائی, آپ تو وارث ہیں ان کے. اچھا کچھ نام میں اور پڑھ دوں, عباس ہلدی, محمد مظفر حسین, افراز خان, مظہر خان, ایمل خان شلمائی, طفیل احمد, نور بلوچ, عمران خان پٹھان, وسیم علی, الف زاہد, ان سب نے مزید پیغامات بھیجے. میں کچھ نام مس بھی ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں, لیکن آپ اطمینان رکھیے آپ سب کے جو فیس بک پر ہیں موجود ہیں نام, اور آپ نے کیونکہ سوال نہیں لکھے تو امید ہے کہ آئندہ آپ اپنے سوال بھی لکھیں گے. ایک دو میرے پاس پیغامات اور ہیں اگر مجھے نظر آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ والد صاحب کا مجسمے کے ساتھ اور کس کس کا مجسمہ ہے وہاں پر, کن فنکار؟
منیر سردی کا مجسمہ ہے
جی,
منشا ڈھولی کا ہے
جی,
اور یہ تو میں نے دیکھے تھے وہاں پر, یہ منشا ڈھولی, منیر سردی, بابا خمیس خان.
اچھا اچھا سلیم علی منہاس نے بھی سلام دعا اور خوشی کا اظہار کیا تھا آنے پر, صمد خان, عدیل بٹ, ابو بکر بٹ, عامر عباس, دو ہیں ان کے پیغامات. تو بہت شکریہ آپ سب کا, اور اگر آپ سوالات لکھتے تو ہم پوچھ بھی لیتے, لیکن بہرحال اب ہماری مہمان آج کے دن میں تو نہیں پہنچیں, لیکن آپ خوش ہوئے ہوں گے کہ ان کے بدلے میں بہت ہی ہمارے معروف فنکار اور پاکستان کے ایک بہت ہی عظیم فنکار کے بیٹے, میں ان کے لیے لفظ کہوں گی, خمیس خان جو الغوزہ بجاتے تھے, پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بڑی خوش دلی سے اور فراغ دلی کے ساتھ انہوں نے بہت سارے نئے فنکاروں کے بارے میں بتایا جو آج کے جشن بہارہ میں ہیں. تو سامعین یہ میں اکبر آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی, اور ہاں یہ بھی کہوں گی کہ آپ ایک چھوٹا پیغام میسج بھی ضرور لکھیے گا اپنا, اپنے باپ والد صاحب کے بارے میں کچھ بھی, چھوٹی سی 5-6 لائنیں میں چاہوں گی کہ وہ میں آپ کی ان کی تصویر کے ساتھ ڈالوں اس پر, ٹھیک ہے, اور ایک فوٹو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی کھینچوائیے گا آپ. تو بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام سننے کے لیے, اور بڑی خوش دلی سے کچھ ناراضگی کا اظہار نہ کرنے پر اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان.